एक उफान भर अपने अंदर, तू पार कर मुश्किल का समंदर। एक उफान भर अपने अंदर, तू पार कर मुश्किल का समंदर।
रोक पाएगा कौन तुम्हें, सिंह की वो संतान तुम। बढ़े चलो हो हौसलों की एक नई पहचान तुम। रोक पाएगा कौन तुम्हें, सिंह की वो संतान तुम। बढ़े चलो हो हौसलों की एक नई पहचान तुम।
एक उफान भर, एक उफान भर, एक उफान भर, एक उफान भर, एक उफान भर,
तू पार कर दे हर मुश्किलों का समंदर।
शौर्य की हुंकार तुम, सरलता का गान तुम। एक उफान भर तो पार कर ले हर मुश्किलों का समंदर। शौर्य, करेज, स्पिरिचुअल करेज, मॉरल करेज। शौर्य की हुंकार सुन, सरलता का गान तुम। ये मार्ग साहस का मार्ग है, सारे भयों के साथ अज्ञात में छलांग का मार्ग। टेरा इनकॉग्निटो, अज्ञात क्षेत्र, पता नहीं क्या होगा इसमें, पता नहीं कौन कौन मिलेंगे इसमें, कौन कौन छूटेंगे। अंग्रेजी कवित्री एमिली डिकिंसन की एक कविता है, When much in the woods as a little girl, I was told that snake would bite me, that I might pick a poisonous flower or mushroom, or the goblins would kidnap me. But I went along and met none but angels. वो कहती है, जब मैं जंगल में खो गई थी और मैं छोटी सी बच्ची थी, लोगों ने मुझे डरा दिया और बहुत डरा दिया, आगे मत जाना, आगे साफ है, जहरीले पुष्प है, मशरूम है, भूत प्रेत आएंगे और तुमको किडनैप करके उठा कर ले जाएंगे। पर मैंने क्या किया, आई वेंट अलोंग, पर मैं चलती गई, एंड मेट नन बट एंजल्स, और फरिश्तों के अलावा मुझे और कोई मिला ही नहीं। मार्ग अज्ञात तो है परंतु निश्चय विश्वास मार्ग संयम का है, आत्म साक्षात्कार आत्मा को निराधार बनाने का है। जो हो गया सो हो गया, द पास्ट इज द कैंसल्ड चेक, रद्द किया हुआ चेक है, अब उसका कोई अर्थ नहीं। क्या किया, कहां से आए, क्या संघर्ष किया, ये किया वो किया, इसको छोड़ा उसको छोड़ा, इधर से भागे उधर से भागे, इससे भागे उससे भागे, द प्रेजेंट वर्तमान बस यही सत्य है, द पास्ट द फ्यूचर, अतीत और भविष्य दोनों ही सूडो टाइम है, झूठा समय है, वास्तविक समय अब है और यहां है। शौर्य की हुंकार सुन, रोक पाएगा कौन तुम्हें, तुम्हारा मन ही रोकता है बस और कोई नहीं। एक उफान भर सुबह की, अब साकार मुरली, बाप तुम्हें सौगात देते हैं कौन सी, कौन सी सौगात, मन मनावो की सौगात है या मंत्र है? मानने को तो कुछ भी मान सकते हैं, पर बाप तुम्हें कौन सी सौगात देते हैं? सुबह की साकार मुरली, बाप तुम्हें कौन सी सौगात देते हैं? क्या इस टीचर का कोई टीचर नहीं, इस बाप का कोई बाप नहीं, इस गुरु का कोई गुरु नहीं, बाप तुम्हें सौगात देते हैं कौन सी, एक उफान भर स्व उत्साह में रहो और दूसरों को उत्साह दिलाने का उत्सव मनाओ, ये है उफान, उमंग उत्साह जोश, खुद को खुद ही जोश में लाओ, सेल्फ मोटिवेटेड, दूसरों को सुनो फिर वो मोटिवेट करे फिर हम काम करें, प्रक्रिया लंबी है, और जो मोटिवेट कर रहा है कभी कभी हो सकता है वो ही डीमोटिवेटेड हो जाए, स्वयं के मोटिवेशन स्वयं बनो, स्वयं ही स्वयं को उत्साह मिलाओ, स्वयं ही उत्साह मनाओ, दूसरों की इंतजार नहीं करनी, दूसरे आए कुछ सुनाए कुछ बताए, अभी करो, अभी नहीं तो कभी नहीं, शौर्य का मार्ग है, साहस का मार्ग है, और सबसे बड़ा साहस ये है वर्तमान में जीना, अतीत में नहीं, भविष्य की चिंताओं में नहीं। एक व्यक्ति के बाद पास बहुत कीमती घड़ी होती है और वो घड़ी बिगड़ जाती है, खराब हो जाती है, वो वॉच मैकेनिक के पास ले जाता है, घड़ी को ठीक करने वाला वो दुकानदार बहुत कोशिश करता है घड़ी को ठीक करने की, पर घड़ी ठीक नहीं होती है, गुस्से में आकर वो दुकानदार उस घड़ी से कहता है, मेरी प्यारी घड़ी आखिर तुमको हो क्या गया है, क्यों ठीक नहीं होती तुम? और अचानक घड़ी बोल पड़ी, क्या कहा घड़ी ने? घड़ी ने कहा, हर मिनट में 60 बार टिक करती हूं, हर घंटे में फिर 60 बार, और 24 घंटे में 84,600। जैसे मैंने आज ये सोचा, मेरे तो होश उड़ गए। मैं कितना काम करती हूं, मैं थक गई हूं, मैं चिंतित हूं, मेरा आगे क्या होगा, भयभीत हूं कहीं खत्म ना हो जाऊं। इस भय ने, इस चिंता ने मुझे डरा दिया है कि मैं तो दिन रात चली रही हूं, बढ़े जा रही हूं, मेरे पैर दुखेंगे, मैं थक जाऊंगी और हो सकता है मैं मर जाऊं, इसलिए मैंने बढ़ना बंद कर दिया। दुकानदार ने कहा, बड़ा स्मार्ट मैकेनिक रहा होगा, वॉच मैकेनिक ने कहा, तुम भविष्य की चिंता छोड़ो, एक काम करो, एक समय पर एक कदम उठाओ, बस एक समय पर बस एक बार टिक करो, और फिर अगली बार उसको दोहराओ, फिर अगली बार उसको फिर दोहराओ, आगे की सोचना बंद करो, केवल एक समय पर एक कदम, और फिर बाद में केवल उसको रिपीट करो, बाद में कुछ नहीं करना है, एक बार कदम उठाया, अब खाली रिपीट करते रहना है बस। घड़ी के मन में एकदम खुशी जाग उठी, अरे वाह, इतना आसान, और घड़ी चल पड़ी, और अब न थकती है न रुकती है, ना कोई चिंता है, वन स्टेप एट अ टाइम, एक कदम, बस एक कदम, एक कदम तुम्हारा, सौ मेरे, भगवान हुआ आज जो मेरे मददगार है, वो मुझे पाप उनसे लाभ करते हैं। चलो बढ़ो, स्वयं को स्वयं ही उमंग उत्साह मिलाओ, स्वयं में स्वयं ही उफान भरो, एक उफान भर, तू पार कर ले हर मुश्किलों का समंदर। मुश्किलें तो सब तरफ है, पर उत्साह होगा। वरदान में क्या कहा, समय नहीं देना पड़ेगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, फेस्टिवल, हर दिन क्या होगा, फेस्टिवल, पर्व होगा, क्रांति का ये पर्व आया, क्रांति का पर्व होगा, उत्साह का पर्व होगा, परिवर्तन का पर्व होगा, सूर्य की अरुणिम विभा बन, किरण बन उतरा नयन में, क्रांति का ये पर्व आया। तो ये क्रांति का पर्व, ये परिवर्तन का पर्व है, ये किए हुए पापों और विकर्मों के पश्चाताप का पर्व है, ये माफी मांगना और माफ करने का पर्व है। शौर्य की हुंकार सुन, शौर्य की आवश्यकता है, साहस की आवश्यकता है। अभी अभी 2018 में एक महिला थी, है अभी भी शायद, उसको पुरस्कार मिला था प्रेसिडेंट के द्वारा, उस पर एक फिल्म भी बनी है, द बेयरफुट एक्सप्रेस नाम की फिल्म, डॉक्यूमेंट्री है 15 मिनट की, द बेयरफुट एक्सप्रेस। केरला की एक महिला है, 96 एज में उसने पढ़ाई चालू की, 96 एज में, अम्मा कात्यायनी, केरला की ये स्त्री अम्मा कात्यायनी, उसको बचपन में शादी हो गई, बच्चे हो गए, मंदिर में साफ करती थी, झाड़ू लगाती थी, बाहर अंदर आने नहीं देते थे, डिनाइड एजुकेशन, और ये अम्मा कात्यायनी 96 एज में उसने संकल्प किया, मुझे पढ़ाई करनी है, और मार्क्स कितने मिले उसको, 98 मार्क्स मिले 100 में से, टोटल कैंडिडेट 40,000 से भी ज्यादा थे, वो तो सब युवा होंगे बच्चे। वो कहती है इसमें शर्म की क्या बात है, पढ़ने की उम्र थोड़ी ना होती। और उसका लक्ष्य था 10वीं कक्षा देनी है 100 साल की उम्र में, ये 2018 की बात है, शायद दी भी होगी 2000 में। बूढ़ी सी औरत, द बेयरफुट एक्सप्रेस, यही पहली बार, अभी 101 पहली बार फ्लाइट से गई दिल्ली पुरस्कार लेने। ऐसी ये भूमि है, ये फिल्म है, उसमें पोस्ट कर देंगे, इंग्लिश डॉक्यूमेंट्री है। ये जा रही है स्कूल में पढ़ने। उसके ग्रेट ग्रैंड डॉटर 9 और 12 साल का कोई बच्चा, वो पढ़ाते, उससे प्रेरणा आई उसको। स्कूल में बैठने की उसको कोई ये नहीं है, शर्म नहीं है, पढ़ना है। इसे कहते हैं शौर्य, इसे कहते हैं साहस। सुबह 4 बजे उठती है, वेजिटेरियन है। 1922 में उसका जन्म हुआ था, तो पढ़ाई करते रहना। ये पढ़ाई न्यारी है, सुबह की साकार मूर्ति वंडरफुल है, सहज है, गुप्त है। सहज है, न्यारी है, वंडरफुल है, गुप्त है, पढ़ो। उसको 96 एज में भी शर्म नहीं है छोटे छोटे बच्चों के साथ। उसके पोते और परपोते की उम्र के बच्चे हैं, और उसका उमंग उत्साह देखो 2018 में। 100 उम्र की जब होंगी तब 10th तो देना ही है। सब करती है रीडिंग राइटिंग, और मार्क्स टॉप किया है उसने, 98 मार्क्स मिले उसको 100 में से। वो कहती है सब आसान है, बहुत आसान है, लिखना पढ़ना रीडिंग राइटिंग अथक, पढ़ाई में अथक, जो कुछ जाना जो कुछ समझा। कल कहा था ना, अगर कुछ नहीं समझते हो तो क्या करो, कोशिश करो, जानने की कोशिश करो, प्रयत्न करो, प्रयास करो, उद्यम, सतत उद्यम। क्या है, क्या है समझना है। आज भी कहा शुरुआत में, तुम ही समझते हो बस। समझना है ये कॉन्सेप्ट क्या है, समझना है ब्रह्मचर्य क्या है, समझना है संपूर्ण अवस्था होती क्या है, समझना है ये संपूर्ण निर्विकारिता है क्या, संपूर्ण दोजक किसे कहा जाता है, ये नरक है, इसकी स्पष्ट अनुभूति हो, ये नरक है, ये सिनेमा नरक है, ये पुराना छीछी शरीर इसमें रखा क्या है, ये नरक है, जीता जागता जीवंत नरक, दिस इज लिविंग हेल। द ओल्ड डर्टी वर्ल्ड, छीछी दुनिया, इसको क्या देखना, क्या मिलेगा इसको देखने से। स्पष्ट अनुभूति ये दुख है, ये खाया तो ये होता है, स्पष्ट अनुभूति है, कॉज एंड इफेक्ट, कार्य कारण का नियम है, ये किया तो ये अनुभूति होती है, स्पष्ट देख लेना, कोई कह रहा है इसलिए नहीं, खुद के अनुभव से। कौन सुलाता है, किसकी वजह से नींद आती है, प्रमाद आलत आता है, आलस आता है, क्यों उठने की इच्छा नहीं होती है सुबह, क्या है जो इतना भारी कर रहा है। खुद को देखो और अपनी यात्रा को स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाना है, ठोस से तरल की ओर ले जाना है, सॉलिडिटी से लिक्विडिटी की तरफ। रिजिडिटी से, सेल्स में रिजिडिटी है, दो सेल्स में इतनी रिजिडिटी है, प्रेम कम हो गया है उनका। सॉलिड लिया, रिजिड हो जाते, सख्त हो जाते, कड़े हो जाते, सिस्टम पर बोझ है सॉलिड। धीरे धीरे स्वयं को सॉलिड से मुक्त करते जाना है, धीरे धीरे हमें अपने स्वरूप की ओर चलना है, और हमारा वास्तविक स्वरूप ही वो है। हम ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन डूइंग नहीं, स्वरूप है हमारा, हम संपूर्ण है, हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है बाहर से, पर हम खो गए। माया ने आंखों में क्या डाल दी, धूल, सुबह की साकार मुरली। सोचो हम ऐसे खड़े और कोई आके मिट्टी उठाए और आंखों में ही डाल दे और हमसे कहे कोशिश करो देखने की, कोशिश करो तुम कर सकते हो। अरे कहां कोशिश, दिख ही नहीं रहा है कुछ, क्या करते हैं पता ही नहीं चलता है। सुबह की साकार मुरली, धूल डाल दी। इसलिए समझना है कौन बाधा है, कौन विघ्न है। विघ्नों को जानो, समझो, परखो, डायग्नोस करो और उखाड़ कर बाहर फेंक दो। पहले पहले इस यात्रा में भी कई चीजों का सहारा लेना है, ऐसा नहीं सभी छोड़ दो एक साथ। ले लो सहारा, इसका लो, उसका लो, उसका लो, उसका लो, ताकि यात्रा सुगम हो। और आगे बढ़ गए तो लात मार कर फेंक दो फिर उसको, पर शुरुआत में सहारा लेना पड़ेगा कई चीजों का, जिसमें फ्लेवर है, जिसमें टेक्सचर है, जिसमें खुशी मिलती है, जो बचपन से लिया है, आनंद है उसमें। पर जैसे जैसे क्लास कक्षा आगे बढ़ेगी, फिर निचली कक्षा की पढ़ाई अच्छी नहीं लगेगी, फिर आगे की कक्षा और आगे और आगे। शौर्य की हुंकार तुम सुन, ये शौर्य है, यही साहस है। पुराना छोड़ देना ये साहस है। पुराना जो निरर्थक हो चुका है, अब उसका जीवन में कोई अर्थ नहीं, उसका चिंतन करना, उसकी चाह करना, वो क्षण फिर आ जाए वापस, कभी नहीं आएंगे। दूध गिर चुका है, वो दूध वापस आ सकता है क्या थाली में? Why cry over spilt milk? आगे बढ़ना, ये यात्रा आगे बढ़ने की, रुकने की नहीं है, पीछे मुड़ मुड़ के देखने की नहीं है, बस आगे और आगे और आगे और आगे और आगे। नई नई बातें पता चलेगी इस मार्ग में, बहुत मुश्किलें आएगी, पर तू पार कर मुश्किलों का समंदर एक उफान भर, यही सौगात है बाप की तरफ से। उमंग उत्साह, स्व उत्साह में रहना, दूसरों को उमंग दिलाना।
प्रश्नों की श्रृंखला में 161 क्वेश्चन चुका है। हाँ, ये भी हो गया, 62 भी हो गया, 63। एज 41, ज्ञान में 9 साल से। मुझे प्योरिटी में पेपर आता है, मैं चाहती हूँ प्राणिक ऊर्जा से मुझमें इतनी शक्ति भर जाए, मेरे में ही इतनी शक्ति भर जाए, वो आत्मा शांत शीतल हो जाए। कौन आत्मा? सामने वाला।
सिलेबस
हो रहा है लेकिन पेपर आने से डर भी लगता है, मेरी स्थिति कैसे ठीक रखूं? प्लीज आंसर दीजिएगा जरूर। आंसर स्टार्ट।
सिलेबस ही सहज परिणाम है प्राणिक लिविंग का। सिलेबस ही सहज परिणाम, जैसे ही भोजन में रूपांतरण होता है, चेतना में रूपांतरण आता है, शरीर के प्रति आसक्ति स्वतः ही खत्म हो जाती है, भोजन में सुख अर्थात शरीर में सुख, जो सबसे बड़ा सुख है उससे ही पार निकल गए तो फिर शरीर के सारे सुखों में जो सबसे बड़ा सुख है वही गिर गया तो आत्मा स्वयं में स्थित होने लगती है और यहाँ जो अमृत मिलता है उसको, उसके सामने संसार के सभी सुख गौन है, व्यर्थ है। एक बार वो टेस्ट हो गया, टेस्ट कर ली आत्मा, कर ले बस परमात्मा रस, ईश्वरीय रस, महारस, द सुप्रीम नेक्टर। तो इस रस के आगे संसार के सभी रस निरर्थक, व्यर्थ, निरस, विरस रखने लगते हैं। एक है गन्ने का रस और दूसरा है उसका छिलका। क्या चाहिए? प्रभु प्रेम है, ईश्वरीय रस है, वो अमृत की खान। अस्थि अमृत की खान, साधना में पी ले इसके प्याले, ये जब पी लोगे साधन जो ब्रह्म ज्ञान, तो फिर बाकी कुछ पीने की आवश्यकता नहीं। ये महारस है, महाप्याला है, तृप्ति, परम तृप्ति की अनुभूति, और कुछ नहीं चाहिए, सब मिल गया। तो इस प्राणी की यात्रा में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और जैसे जैसे अपने फूड के साथ के कनेक्शन को समझेंगे, फूड के साथ हमारा क्या रिलेशन है वो समझ में आएगा, और कितने कम की आवश्यकता है हमें ये समझ में आएगा, तो शरीर की उत्तेजनाएं, शरीर की वासनाएं, शरीर की कामनाएं, शरीर में उत्पन्न काम स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। वहां रहेगा ही नहीं, क्योंकि जो खाया उसी से ही काम के संकल्प उत्पन्न होते हैं, और मुख्य तौर से सॉलिड फूड। जैसे ही लिक्विड पर जाएंगे और शरीर में वो लिक्विड का फ्लो एस्टैब्लिश होगा, धीरे धीरे वो काम के विचार, शरीर का आकर्षण स्वतः ही नष्ट होते जाएगा, सहज परिणाम होगा ये। और हर समय, हर स्थान में और हर परिस्थिति में ब्रह्मचर्य अखंडित रहेगा। हर समय, हर स्थान में और हर परिस्थिति में, वो सारे समय देखो जब जब ब्रह्मचर्य खंडित हुआ, साक्षी होकर निरीक्षण करो, वो हर स्थान को देखो जिस जिस स्थान पर ब्रह्मचर्य खंडित हुआ, और हर परिस्थिति में, ना कोई परिस्थिति, ना कोई स्थान और ना कोई समय हमारे ब्रह्मचर्य को खंडित कर सकेगा। इतनी शक्ति हम में भर जाएगी, इतनी प्राण ऊर्जा, इतनी संजीवनी ऊर्जा, इतनी परमात्मा ऊर्जा, इतनी आत्म ऊर्जा, आत्मा इतनी आत्मवान, ऊर्जावान, वीर्यवान बन जाएगी। तो सहज ब्रह्मचर्य यदि सदना है, साधना है, धारण करना है, अंगीकार करना है, तो ये सबसे सहज मार्ग है लिक्विड्स, और उसमें भी लिक्विड विथ कैलोरी। सीधा जीरो डाइजेशन पर नहीं जाना है, जीरो डाइजेशन अर्थात ड्राई फास्ट, उपवास करना, निर्जला करना, वाटर फास्ट करना, ये सब नहीं, धीरे धीरे, स्लो स्लो हो सकता है ये सब चीजें हम बाद में कर पाएंगे, अभी नहीं, पहले, क्योंकि अभी अगर कर दिया तो सबसे बड़ी बाधा होगी वेट लॉस, और वेट लॉस होते ही कॉन्फिडेंस खत्म, यात्रा रोक दी गई, और फिर वापस उसी सॉलिड फूड में आ जाओ, वापस उसी में आ जाओ, और फिर ब्रह्मचर्य पूरा संगम युग में एक स्वप्न रह जाएगा। वो जो हायर स्टेजेस ऑफ कॉन्शियसनेस है प्यूरिटी की, बाबा कहते प्यूरिटी में ऐसा होता है वैसा होता है, स्वप्न में भी खंडित ना हो, व्यर्थ में भी अपवित्रता है। ये तो बहुत ही बात की बातें हैं। पहले तो स्थूल प्यूरिटी में, प्यूरिटी की जो नींव है वो है ब्रह्मचर्य, ये ईट है, इसके ऊपर प्यूरिटी की बिल्डिंग खड़ी होती है। यात्रा ब्रह्मचर्य से प्यूरिटी की है, यात्रा ब्रह्मचर्य से पवित्रता की है, पवित्रता से ब्रह्माचर्य की है, और ब्रह्माचर्य से पावनता की है। यह क्रम है यात्रा का। ब्रह्मचर्य से यात्रा चालू होगी और आएगी पवित्रता पर, और पवित्रता के बाद है नेक्स्ट स्टेप ब्रह्माचर्य, और ब्रह्माचर्य करते करते सतयुग में बनेंगे पावन, पावनता। ऐसी ये यात्रा है सहज।
मैं कुमार हूं, प्राणायाम की यात्रा करके क्या हम हार्ड वर्क कर सकते हैं लिक्विड लेकर?
बिल्कुल, बहुत ज्यादा, और रादर अगर सॉलिड फूड खा रहे तो हार्ड वर्क नहीं कर सकते। नींद आती है उसमें, आलस आता है, अलबेलापन आता है, प्रमाद, निद्रा, थकान, क्योंकि शरीर में जड़ता होती है, और जब लिक्विड्स में रहते हैं, प्राणी की यात्रा में रहते हैं, तो शरीर में निरंतर ऊर्जा रहती है, थकने का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि डाइजेशन से फ्री है। थकाता कौन है? पाचन। थकाता कौन है? डाइजेशन। सॉलिड खाओ, डाइजेशन चालू, शरीर को काम दे दिया, मेहनत दे दी। ये यात्रा तो डाइजेशन को धीरे धीरे कम करने की, एकदम जीरो नहीं करना है शुरुआत में, इसलिए कहा लिक्विड विद कैलोरीज, थोड़ा सा डाइजेशन तो होगा, थोड़ा सा फाइबर तो लेते रहना है, फिर धीरे धीरे खुद ही समझ में आएगा खुद को कि जब सॉलिड फूड लेते थे तब क्या होता था, अभी लिक्विड पर है तब क्या कर रहे, तब क्या हो रहा है। सॉलिड मतलब डाइजेशन, सॉलिड मतलब भारी भारीपन, सॉलिड खा लिया अर्थात सारी शक्ति पेट खींच लेता है, फिर नींद आती है, यहाँ का ब्लड सप्लाई कम होता है, सारा ब्लड सप्लाई यहाँ चला जाता है, क्योंकि अब इसको पचाना है। पोहा खा लिया दो कटोरी, अब उसको पचाना है, यहाँ की ऊर्जा यहाँ, और फिर जा रहे काम करने। तो किया जा सकता नहीं है, यही एकमात्र मार्ग है। वो करोगे तो नहीं कर सकते, उसी लिए तो नहीं कर पा रहे।
नेक्स्ट प्रश्न इसीलिए उठ रहा है, कर पा रहे। नेक्स्ट, पांडव उनमें सेवा में आने के बाद 2 बजे से अमृत वेला नहीं हो पा रहा है, इसका अर्थ माना पहले वहां होता था, यहाँ सेवा में आते तो 2 बजे नहीं उठ पा रहे।
2 बजे उठना क्यों है सबसे पहले?
2 बजे क्यों उठना है? 1 बजे उठो।
दो बजे हुआ, 2 बजे इसमें भी बड़ी अहंकार की तृप्ति होती है, हम ज्यादा पुरुषार्थ, तुम कम, हम 2 बजे वाले, तुम 3 बजे वाले, ये 4 बजे वाला कैटेगरी। बाबा पहले हमसे मिलता है। एक बहन थी तो कहती थी, हम आंखें खोलती सबसे पहले मुझे बाबा को देखना, तो आंखें बंद कर कर की वो जाती थी। एक बार गिर भी गई थी। कितने बजे उठना है, जो होना है वो सहज हो जाए। अगर सॉलिड फूड खा के सो रहे तो शरीर हमें लगता है इतना हल्का तो था, खा लिया, खिचड़ी तो थी खा ली, पर यहां प्रोसेस चालू हो जाता है पूरा, सारा रात भर काम करते रहता है शरीर। इसके लिए लिक्विड्स, अपने आप, ना अलार्म लगाओ ना कुछ लगाओ, अपने आप ही आंख खुलेगी 1:30 बजे 2 बजे। फोकस उठने पर नहीं करो, सो कैसे रहे, कितने बजे सो रहे और क्या खा के सो रहे, वो इंपॉर्टेंट है। क्या खा के सो रहे और कितने बजे सो रहे। कोई 11 बजे सो रहा है और फिर सोचे मुझे 1:30 बजे उठना है, और दिन भर में भी रेस्ट नहीं किया है, कैसे उठ पाएगा? और शरीर में हो सकता है किसी को कितनी बीमारियां है शरीर में, कल ही हमने एक भाई को एडमिट किया, वो कहता है 25 साल से कभी कोई हॉस्पिटल में नहीं आया और कोई बीमारी नहीं है, सब ठीक ठाक चल रहा है, और अभी एकदम कमजोरी आ गई, व्हीलचेयर पर लेके आए, रिपोर्ट हीमोग्लोबिन 5, सारे रिपोर्ट गड़बड़, एक एक रिपोर्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़। अगर ऐसा व्यक्ति ऊपर से तो ठीक ठाक दिख रहा है, उसको अगर कहो उठो 2 बजे, वो कैसे उठेगा, शरीर में 5 खून है बस, शरीर की बीमारियां उठाती नहीं, एक फिर थकान उठने नहीं देती, तीसरा भोजन उठने नहीं देता, चौथा कितने बजे सो रहे वो उठने नहीं देता, अगला आदत ही नहीं है तो कहां से उठेंगे, कई दवाइयां खा रहे हैं उसका सब प्रभाव है, फिर उमंग उत्साह ही नहीं है, फिर कुछ करना क्या है उठ के वही नहीं पता, करना क्या है, सब लोग उठ गए हम भी उठ गए, अब क्या करें, और ये सब कुछ है और सब कुछ अच्छा है, अब उसका महत्व भी पता है, परंतु पास्ट के विकर्म इतने ज्यादा है कि वो विकर्म नींद दिलाएंगे, इसलिए ये एक साधन है फूड परिवर्तन, इसके लिए ये संपूर्ण 108 दिन की भट्टी पश्चाताप की भट्टी भी है, प्रायश्चित्त की भट्टी है,
चली रहा था।
भक्ति मार्ग में कहा जाता है एक दिन का निर्जला उपवास 1 साल के पापों को भस्म करता है, पर उपवास खाली भोजन न खाना नहीं, उपवास, उपवास अर्थात स्वयं के साथ वास करना, परमात्मा के साथ निवास करना, वो है वास, वो न खाना, ये तो बहुत ही सिंपल काम है, कोई भी कर सकता है, अगर इतना ही सिंपल होता तो भगवान ने सबसे पहला नियम ये रखा होता, लोग हठ योग करने में तो एकदम आतुर है, तुरंत कर दे, मजा आता है इसमें, जरा अहंकार की बहुत तृप्ति हो जाती है तुरंत स्थूल कुछ करने में, स्थूल सेवा करो ये करो कितना करते, और फिर कहो बैठे रहो 8 घंटा योग करना है, 8 घंटा कितना कठिन काम है, 8 घंटा सेवा 10 घंटा करने को तैयार हो, पर एक ही जगह बैठो बिना हिले तो सबसे पहले तो सोचो क्यों नहीं उठ पा रहे और क्या युक्ति करे, स्वयं ही सोचो, अपने आप युक्ति मिल जाएगी और फिर उठना सहज हो जाएगा, सहज योग, सुलभ योग।
नेक्स्ट प्रश्न, मैं कुमार हूं, 12 साल से ज्ञान में हूं, चल रहा हूं, मुझे प्राण ऊर्जा पर रहना है, परंतु सबसे बड़ी मेरी टीचर बहन है, क्योंकि भोजन हम सबका एक साथ होता है।
जहां भी संगठन होंगे वहां थोड़ी मुश्किलें तो आएगी, चाहे मधुबन चाहे सेंटर चाहे घर, क्योंकि जैसे कहा ब्रदरियन के कैटेगरीज है, 0 कैटेगरी अर्थात वो जो इसके विषय में कुछ भी नहीं जानते, उन्हें पता ही नहीं है, अनभिज्ञ है इस प्राण ऊर्जा के विषय में। कैटेगरी 1 जिनको थोड़ा थोड़ा पता चला है कि ऐसी एक ऊर्जा है, ऐसी एक शक्ति है जिस पर जिया जा सकता है, और अगर उसमें उसके बारे में और जानने की इच्छुक है, साइंस भी उसके बारे में, बायोफोटॉन्स साइंस भी अभी बात कर रहा है, यूनिवर्सल लाइफ एनर्जी, वाइटल फोर्स, एनर्जीज, एनर्जी पर कितनी किताबें लिखी जा रही है। कैटेगरी 2 उसकी अनुभूति, एक दिन उपवास किया तो तुरंत ऊर्जा का अनुभव हुआ, विस्फोट हो गया ऊर्जा का, एक दिन पूरा दिन जूसेस पे रहे, उस दिन एकदम क्षमता बढ़ गई, दोपहर में रोज सोते थे, आज दोपहर में नींद नहीं, रात में 3 घंटा नींद हुई पर ऐसा लगा 6 घंटा नींद करके उठ रहे, यहां लेवल 2 पर अनुभूति होने लगती है, और लेवल 3 पर व्यक्ति मैनिफेस्टेशन। हम में से यहां कितने लोग बैठे हैं जो लेवल 3 पर है, इस यज्ञ में ही 1000 लोग होंगे जो लेवल 3 पर है, उनको ही पता नहीं वो लेवल 3 पर है, उसमें वो सब लोग आते हैं जो दिन में एक बार खाते बस, बाकी टाइम पे जूसेस पे रहते, लिक्विड्स पे रहते, या फिर उसमें भी हायर कैटेगरीज में लेवल 3 में हफ्ते में एक बार खाने वाले बहुत सारे लोग हैं, बाकी सारे दिन बाकी सारा समय केवल पीते हैं लिक्विड्स, हफ्ते में एक दिन रखा है सॉलिड फूड का, पर कई लोग ऐसे हैं कि महीने में 21 दिन लिक्विड्स पे रहते हैं, बचे हुए जो 7 दिन है वो सॉलिड को एंजॉय करते हैं। एक है खाने की दुनिया, एक है ना खाने की दुनिया, दोनों ही दुनिया को एंजॉय करते हैं। हमें एक ही दुनिया का पता है बस, सॉलिड फूड खाना और एंजॉय करना, ना खाने की दुनिया का पता ही नहीं। इसलिए दोनों ही दुनिया को एंजॉय करना है, इधर की दुनिया उधर की दुनिया। इसलिए डेज सेट करके रखते, हफ्ते में 4 दिन खाएंगे, 2 दिन नहीं खाएंगे, लिक्विड्स पे रहेंगे, ऐसा भी करना। ये लेवल 3 है, और ये लेवल 3 जब लंबा समय चलता है, मे बी कुछ साल, फिर धीरे 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 रिफाइनमेंट आने लगती है। धीरे 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 ये सूप हटते जाएगा, स्मूदीज हटती जाएगी, धीरे 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 ऊर्जा से ही हमें अनुभूति होगी कि पेट निरंतर भरा हो रहा है, शक्ति है। फिर धीरे धीरे कैटेगरी 4 अपने आप आने लगेगी। तो ये क्रम है इसका, 0, 1, 2, 3, 4। अभी अगर हम सीधा सोचे हम कैटेगरी 4 में आना चाहते हैं, वो कुमार है, प्रश्न है कि मुझे पौराणिक जीवन जीना है, पर ये सारी अवस्थाओं से गुजरना पड़ेगा। सीधा कोई कैटेगरी 4 में कभी नहीं आ सकता। हाँ, कुछ कुछ लोग हैं जिन्हें एकदम वरदान प्राप्त हो गया, जैसे प्रहलाद जानी, बस बचपन में ही वरदान मिल गया। जैसे वो देवी स्वप्न में आई और देवी ने कहा आज से तुम भोजन से मुक्त, 70 साल नो फूड नो वाटर, प्रहलाद जानी। बाल योगिनी सरस्वती, दक्षिण भारत, साउथ शायद आंध्रा या केरला, बाल योगिनी सरस्वती, छोटी सी, न भोजन न खाना न पीना, वरदान मिल गया उसको। ऐसे कई गिफ्टेड लोग हैं, सेंट थेरेसा न्यूमैन, गिरिबाला, ऐसे बहुत से ढेर सारे उदाहरण है इतिहास में। परंतु बाकी सभी लोगों को धीरे धीरे पुरुषार्थ से ये अवस्था आएगी। और यात्रा भोजन की यात्रा है ही नहीं, यात्रा है ऊर्जा की। स्वयं में ऊर्जा जितनी अधिक भरेगी, अनुभव होगा कि मैं फुल हूं। जैसे यहां तक खाने के बाद 5-10 रोटी खाने के बाद किसको कहो कि थोड़ा सा हलवा खा लो, कहता नहीं नहीं मेरा पसंद का है पर जगह कहाँ है, वो अनुभूति। तो यहां पर पेट फूड से भरा हुआ है, प्राणिक यात्रा में पेट लाइट से भरा रहता है और लाइट ही भोजन हो जाता है। और फिर ये कहां से आएगा, वो कहां से आएगा, साइंस के सारे क्लेम, प्रोटीन कहां से, विटामिन कहां से, ये कहां से, वो कहां से। शरीर उस अवस्था में पहुंचता है कि वहां पर शरीर अपने आप सब कुछ निर्माण करता है, सारे विटामिन, सारे प्रोटीन, सारे न्यूट्रिएंट्स। इस एयर में, कॉस्मिक रेडिएशन में, कॉस्मिक लाइट में ही सब कुछ है। फल में, फल कहां से आता है, फल में मिठास कौन भरता है, धरती से आती है ना, कॉस्मिक रेट। एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया, 2 पौधे लिए, ठीक है, तो यहां मिट्टी, एक पौधा लिया वहां मिट्टी, और वो बीज डाला, फिर पौधा बड़ा हुआ, फिर वो मिट्टी को पहले गिना कितनी है मिट्टी, इतनी है, फिर पेड़ बड़ा, तो बड़ा बड़ा होते गया, इतना बड़ा हुआ, फिर गिना मिट्टी उतनी की उतनी, बहुत बड़ा हो गया, फिर भी मिट्टी उतनी की उतनी। मतलब पेड़ को पोषण मिट्टी, खाली मिट्टी से नहीं मिल रही, मिट्टी पेड़ नहीं बन रही, फिर उसको फल लग गया। अब फल में मीठा है, ये मिठास मिट्टी से थोड़ी आई, कॉस्मिक रेडिएशंस। हाँ, कहां से, कॉस्मिक रेडिएशंस, इसमें ही वो ऊर्जा है, उसमें ही वो पावर है, सब कुछ उसमें से। तो धीरे धीरे चेतना इतनी सूक्ष्म होती जाएगी कि हम इससे ही सब कुछ हमको प्राप्त होने लगेगा। तो ये यात्रा है, इसलिए ये पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न रहा सेंटरों की बात, मधुबन की बात, वो लोगों के बीच में रहना पड़ता है कि जिनको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं और जो इसका विरोध करते हैं। इसीलिए हमने इस यात्रा को इस तीसरे चरण में एक नया मोड़ दिया है, और वो होना ही था। इसलिए शुरुआत कहीं और से की थी, धीरे 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 जैसे यात्रा आगे बढ़ी, नए नए पहलू खुले, क्योंकि उसका भी अनुभव जरूरी था, उस रॉ का भी अनुभव जरूरी था, उस फ्रूट का भी अनुभव जरूरी था, फास्टिंग का भी अनुभव जरूरी था, इंटरमिटेंट फास्टिंग का भी जरूरत था। क्योंकि जब आप सॉलिड फूड पे रहते हो, अगर हफ्ते में एक दिन फास्ट ना करो तो बीमार पड़ते जाओगे, अगर सॉलिड फूड पे है और इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करोगे तो बीमार पड़ोगे, सॉलिड फूड पे हो और कभी कभी जूसेस ना लो, रॉ ना लो, तो बीमार पड़ते जाओगे। हाँ, पर जब लिक्विड में है तो ये सारे नियम हटा दिए। लिक्विड डाइट में कोई टाइम नहीं है। लिक्विड्स में फिर अभी हमने कुक्ड का भी हटा दिया, कुक्ड भी लो, अनकुक्ड भी लो, दोनों भी, और क्वांटिटी जितनी मर्जी है उतनी लो, क्योंकि हमें अगर लिक्विड को ही जीवन बनाना है तो दायरा थोड़ा बड़ा चाहिए, ऐसा नहीं कि इतने से इतने बजे ही खाओ, सूर्यास्त के बाद मत खाओ, ये नहीं हो सकता है। हो सके तो सुबह, लोग कहते हैं नींद आती है, सुबह 1 बजे कॉफी पियो, 2 बजे पियो, लिक्विड्स की कोई टाइमिंग नहीं है, पर लिक्विड लिक्विड लिक्विड्स चबाना नहीं है, बस चबाते ही अंदर का राक्षस जगता है।
दांत निकाल के बाहर रख दो,
खाली दांत निकालने से कुछ नहीं होगा, व्यक्ति डेंजर बना लेगा, ये तो दमन होगा, कुछ भी करके कुछ तो करेगा ही। यहां तो मन में जो दांत है ना उसको निकालने, मन के दांतों को निकालने, सबसे बड़े दांत तो माइंड में है, वहां से ही व्यक्ति चबाता है दूसरे को भी। तो इन लोगों के साथ कठिनाई तो होगी, परंतु जैसे ज्ञान में आए तो अज्ञानियों के साथ रहते थे तो कठिनाई तो होती थी ना, परंतु जो दृढ़ रहे, ये दूसरे टाइम ज्ञान में आना है, वो फर्स्ट टाइम था, वहां ज्ञानी अज्ञानी, यहां प्राणिक अप्राणिक, वहां पर वो नहीं समझते थे, बाद में वो समझने लगे, यहां पर भी अभी नहीं समझते, पर जब बीमार बीमार पड़ेंगे बहुत, फिर धीरे धीरे समझ में आएगा, थोड़ी युक्ति से, जैसे वहां तोड़ निभाते थे यहां तोड़ निभाना है, जैसे वहां विरोध हुआ यहां भी विरोध होगा, वो विरोध फिर होगा, हंस और बगुले प्राणिक अप्राणिक,
विरोध में विरोध।
यहां पर भी वो सब कुछ होगा जो ज्ञान में आने के बाद हुआ था, वही विरोध, वही सामना, वही तुम्हारी किताबें फेंक दी जाएगी और तुम्हारा ट्रांसलेट फेंक दिया जाएगा, तुम्हारा सेंटर पर जाना बंद,
डायरी डायरी गुम,
क्लास में आना बंद, क्लास डिलीट कर दो, मोबाइल ही फेंक दो, ये तुम्हारा वही क्लासेस सुनते रहते है, दिमाग खराब हो गया है इसका, खाना पीना बंद कर दिया है।
अगला प्रश्न है,
पागल है, कौन सिखाता है इनको, ये मनमत है तुम्हारी, हट योग, हटाओ इसको। बाबा ने कब कहा ऐसा, ब्रह्मा ने कब कहा, 18 जनवरी 1969 तक कुक्ड खाया है, तुमने ये कहां से लाया, दादियों ने ऐसा किया, मुरलियों में ऐसा है, मुरलियों में
वैसा, के बाद का ज्ञान है
ये सब होगा, वर्तमान समस्या, वर्तमान परिवेश, वर्तमान बीमारियां, वर्तमान जिस जिस हालातों में आत्माएं शरीर छोड़ रही है, ब्राह्मण आत्माएं। पहले तो लोगों ने मुझे पहला ये प्रश्न पूछा था, एक बहुत बड़ी महारथी ने, आपको क्या लगता है अभी कोविड चालू हुआ था जस्ट, बोलते क्या ब्राह्मणों को भी हो सकता है, ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ आत्मा है संसार की, क्या उनको भी कोविड टच करेगा, ये तब प्रश्न पूछा था, टच गया खाली हो गया परिवार। मृत्यु ये थोड़ी ना देखती है, ब्राह्मण है या अब्राह्मण है, भोजन ये नहीं देखता मैं किसके पेट में जा रहा हूं, वो वही करेगा जो उसको करना है, चाहे साधु महात्मा हो या पापात्मा हो, उसका जो गुणधर्म है वही जाके करेगा वो अंदर। सॉलिड फूड ये थोड़ी ना देखता, ये तो ब्राह्मण है, बाबा का बच्चा है, नहीं नहीं नहीं, नहीं इसको उठना है अमृत वेले, मैं अपना प्रभाव नहीं दिखाऊंगा, इसको मैं तंग नहीं करूंगा। ये भोगी है, इसको मैं अच्छे से इसका पूरा अपना फैलाव करता हूं इसके दिमाग में और इसको सुला दूंगा, ऐसे थोड़ी ना सोचता है वो। एक चाकू है वो मारेगा साधु को भी और पापी को भी, दोनों को, वो अपना गुणधर्म है उसका। तो सेम इधर भी है, इसका कोई उत्तर नहीं है, इसमें बस आगे बढ़ते जाओ, जिसको निश्चय हो गया उसको हो गया, ये वैसा ही है, इसमें सब नहीं आएंगे, जिसके भाग्य में है वही आएगा। सौ समझाओ सौ लोगों को, प्रदर्शनी सौ को समझा जाता है, सेंटर पर कितने आते हैं 10, कोर्स कितने करते हैं 5, और टिकता कितना है 1। तो यहां पर भी बहुत अच्छा, हमने भी किया बहुत अच्छा, एक दिन ड्रॉ करके दिया था बहुत अच्छा, ओके सबको बताते जाओ जाओ जाओ, खुद तो करते नहीं। जो मुरलियों में आता है ना वो सब इधर के लिए लागू है सब कुछ। नेक्स्ट,
काफी बीके भाई बहने कहते हैं ये हठ योग है, बाबा ने कहा है, सिर्फ मुझे याद करो,
भाजा बाबा ने कुछ हमने क्या क्या कहा है, उसके सारे महावाक्य सुनाए हैं, पूरे 56 से भी ज्यादा महावाक्य, कितने सारे महावाक्य बिखरे पड़े हैं सब जगह बिखरे पड़े, केवल डायरेक्ट ऐसा कहीं दिखाई नहीं देगा, कितने ये सारे बाबा के ही महावाक्य है सारी मुरलियों में। एक तो दादी जानकी से मुलाकात है, वो तो बहुत ही खतरनाक है, पूरा उसमें यही है, कंप्लीट ब्रदरियन ज्ञान, आप पढ़ते रहो हम ढूंढते।
कुछ ना खाकर भी हम भोजन ही की भोजन ही को याद करते रहे।
नहीं, ये इनिशियल स्टेज है, लगन धीरे धीरे इससे पार निकल जाएंगे।
लगन इतनी बढ़ाओ कि भोजन ही याद ना आए।
हाँ,
क्या ये सही है कि यह काफी कंफ्यूज स्थिति है? ये
देखो, ये दादी जानकी का शायद क्लास है। क्लास है ये, क्या है? हाँ, लोग तो 8 घंटा नींद करने के बाद कहते हमको और नींद आती है। जितना खाना खाओ उतना थोड़ा, उतनी उसको कम करेंगे उतनी बुद्धि अच्छी सोच सकेंगी, सतोगुनी बनेंगी, अच्छी तरह याद कर सकेंगे। दादी जानकी के महावाक्य, और भी बाबा के ढेर सारे महावाक्य, पूरी एक एक मुरली ही प्राणिक मुरली है, बदारियन ही मुरली है, पूरा सब जगह बिखरा पड़ा है, केवल हम उसे देख नहीं पाए, बस हम उसको समझ ही नहीं पाए उस ढंग से,
अपनी क्षमता अनुसार समझा।
हाँ,
अपने आदतों को नहीं तोड़ना या ढक के रखना उनको।
जो भी विरोध है वो एक ही कारण से, एडिक्शन। जो जिसका एडिक्ट होता है, अभी किसको स्मोकिंग का एडिक्शन है, अब स्मोकिंग के सारे विरोध कर रहे लोग, वो उसका विरोध करेगा, वो अलग अलग रीति से कर, और दूसरा हम कर नहीं पा रहे, ये लोग कर पा रहे, तो फिर तो दुखी होते हैं ना। मुख्य ये बात है, हम बीमार पड़ रहे, ये बीमार नहीं पड़ते। एक बार पड़ जाओ बीमार, फिर देखो कैसे पूरा अंदर से जो भरा है ना पूरा निकाल देंगे। एक बार बस तुम्हारा वजन विजन घट जाने दो और तुम हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, फिर देखते हैं सारे आरोप। बाबा ऐसा कर दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। इतनी सी आरजू है बस।
आई एम 64 मानो जो प्रश्न पूछ रहे हैं। माई डाइट इज फ्रूट्स, नट्स, वेजिटेबल एंड वन टाइम कुक्ड फूड, वेजिटेबल, दाल। स्टार्टेड सन गेजिंग इन द मॉर्निंग, अर्ली राइजर, ड्यू टू विंटर नॉट एबल टू बी एबल टू डू सन गेजिंग एज सन राइजिंग इज लेट, काइंडली क्लियर मोर अबाउट सन गेजिंग, हाउ टू गेज सन इन मून।
कई बार बता चुके हैं, जरूरी नहीं है कि सूर्य को ही आधार बनाओ, नहीं है तो छोड़ो, वो एक टूल मात्र है, ठीक है, मिला तो बहुत अच्छा, नहीं मिला तो ठीक। सन गेजिंग नहीं होती, सन बात करो, सन में बैठो, घूमो फिरो, थोड़ा पसीना आने दो, उतना विटामिन डी और मिलेगा। एक विजुअलाइजेशन करो, दो। तीसरा, अभी जो भोजन ये ले रहे इसको परिवर्तन करना पड़ेगा, रॉ को लिक्विड में कन्वर्ट करो, और लिक्विड में तो किसी की भी जरूरत नहीं है, ना सन गेजिंग की जरूरत है, ना बेयर फुट की जरूरत है, ना और कोई भी आयाम की जरूरत नहीं है। इतना शक्तिशाली टूल है ये लिक्विड, अल्टीमेट लास्ट, एकदम अंतिम घाव, अंतिम प्रहार,
अंतिम और दाव,
इसमें अंतिम दाव, और इसमें अपने आप ना तो वेट लॉस होगा, ना कोई बीमारी होगी, और ज्यादा खुशी होगी। और जो दूसरे आपके साथ है, जो दुखी है बेचारे, हम लोग ये खाते, ये कच्चा बिच्चा खाता है घास फूस, वो भी देखेंगे, अरे वाह ये भी हमारे साथ खा रहा है, तो उनको भी थोड़ी खुशी हो जाएगी। तो इसलिए अभी कहेंगे हाँ अभी आ गए ना लाइन पर। तो उनकी भी थोड़ी तृप्ति हो जाएगी, तो वो भी अच्छा है।
लोग नजर ही थाली पर रहती है, ये क्लास में जाते तो भोजन कर रहे
करते क्या करते क्या खाते, और एक बार खाते कि कितनी बार, एक बार ले लिया अभी दोबारा लेंगे कि
तीनों टाइम नजर रहती,
पूरे नजर तुम्हारे इर्द गिर्द जासूस है, CID लगे हुए है, जो प्राणी की यात्रा पर है उसके इर्द गिर्द CID है, जासूस ही जासूस है। इधर सुना है तो बहुत अच्छा, ये खाता क्या अकेले इसको जी। जैसे ज्ञान में चलते है तब भी विरोध, ज्ञान छोड़ देते तो कहते छोड़ दिया, अच्छा तो था, क्यों छोड़ा? अरे तुमने तो विरोध किया था, अरे हम तो करते रहेंगे, तुमने क्यों छोड़ा? अंदर से उनको इच्छा है कि ये चले ज्ञान में, भले ऊपर से विरोध करते, पर अंदर से फिर भी इच्छा रहती है कि ये चले. उसी तरह भले बाहर से विरोध करते हैं पर अंदर से उनको पता है कि यही मार्ग है. उनको पता है ना उनके शरीर का क्या हाल हो रहा है. हाँ, शुभ भावना तो अभी गई थोड़ी ना, ब्राह्मण है आखिर. शुभ भावना कुट कुट के भरी है, ऊपर ऊपर से दुर्भावनाओं का थोड़ा दिखावा करते हैं बस.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्टूडेंट है कोई नीट यूजी, तो ये एमबीबीएस सीट की तैयारी कर रहे हैं. लौकिक घर से कोई भी ज्ञान में नहीं है, ओनली फॉर मी इन ज्ञान में चल रही हूँ पिछले 5-6 मंथ से. घर वाले लोग बहुत बंधन डाल रहे हैं, तो इसके बीच में मैं अभी एग्जाम के टाइम डिप्रेशन में हो गई. कोई बी के मिलने नहीं देते, ना ही सेंटर पर जाने देते. स्टार्टिंग के 5-6 मंथ भी डेली मॉर्निंग मुरली क्लास अमृत वेला भी कर रही थी, लेकिन अभी ये हो रहा है. ये मेरे सारे बी के क्लास भट्ठी, मेरी नीट की स्टडी खराब हो जाती है. मैं क्या करूं जो क्लियर हो जाए, पहले एग्ज़ाम के लिए पूरा प्रिपरेशन कर सकूं और सोचूं कि ये क्लास वगैरह तो बाद में भी देखी जाएगी. असमंजस की स्थिति बनी हुई है इनकी,
कंफ्यूजन है. कंफ्यूजन एक तरफ तो पढ़ाई है, दूसरी तरफ घर वाले हैं, फिर ये ज्ञान है, ये क्लासेस है, ये प्लानिंग
बट्टी है. नहीं देते
यहाँ सबसे मुख्य है, सबसे पहले प्रायोरिटाइज. और यहाँ पर मुझे लगता है सबसे बड़ी प्रायोरिटी है पढ़ाई. और अगर पढ़ाई में आगे जाना है तो बस 2 ही घंटे ज्ञान योग के लिए देना है. 1 घंटा अमृत वेला, 1 घंटा खुद मुरली पढ़ना, बाकी सब बंद. ना कोई क्लास, ना सेंटर, ना कोई सेवा, ना कोई मुरली कहीं जाके सुनना, ना सेंटर की कोई सेवा, ना मधुबन में कहीं जाना. पहला फोकस है पढ़ाई. 2 घंटा ज्ञान योग के लिए दो, 1 घंटा अमृत वेला खुद करो और 1 घंटा खुद से मुरली पढ़ो. बाकी जो बचे हुए 22 आवर्स है झोंक दो अपने आप को उस पढ़ाई में. ये बहुत बड़ी पढ़ाई है, इतनी आसान नहीं है. इतनी बड़ी पढ़ाई के लिए इतना बड़ा त्याग चाहिए. और पढ़ाई के समय केवल ये लक्ष्य रखो कि ये पढ़ाई से मैं बाबा को प्रत्यक्ष करूंगी, इस लौकिक से मुझे उस अलौकिक को प्रत्यक्ष करना है बस. और फिर किसी क्लास, किसी किसी चीज की जरूरत नहीं. अपने आप बाबा टचिंग कराएगा, बाबा मदद करेगा. अगर ये सोचे ये भी करूं, वो भी करूं, वो भी करूं, वो भी करूं, तो कहां से मिलेगा? ग्रेस ऑफ गॉड हेल्प्स यू टू डू एवरीथिंग इन लाइफ एक्सेप्ट पासिंग एग्जाम विदाउट स्टडिंग. परमात्मा कृपा तुम्हारी सब प्रकार से मदद करेगा, केवल एक छोड़ के, लौकिक पढ़ाई बिना तैयारी के पास होना. फिर वो उनके साथ अत्याचार होगा, अन्याय होगा. किनके साथ? जो दिन रात पढ़ते हैं और पास होते हैं, और तुम बिना पढ़े शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा. वो ये होता है ना एमसीक्यू, एक प्रश्न 4 उत्तर, एमसीक्यू एमसीक्यू. बाबा क्या लिखू? ए शिव बाबा. एक बहन ऐसी आई थी, बोले ए बी शिव बाबा बी. ये क्या है? फेल. बाबा ये सब सपोर्ट नहीं करता है.
फिर लास्ट में
बाबा सपोर्ट उनको करता है जो स्टडी करेंगे, जो पढ़ाई करेंगे, जो मेहनत करेंगे, जो सब त्याग देंगे अपना. उनकी मदद करेगा या तुम्हारी मदद करेगा? बाबा 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 बाबा. पढ़ाई नहीं करो और बाबा बाबा करते रहो. अमृत वेला 2 बजे से चालू,
लास्ट में बाबा फेल.
ऐसे बच्चों को बाप मदद नहीं करते. गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, जो खुद की मदद करते हैं खुद. लास्ट प्रश्न.
सेंटर की दीदी को देखकर मन में आता है कि मैं भी समर्पित हो जाऊं, लेकिन लौकिक घर से कोई भी नहीं है और फैमिली प्रॉब्लम होने के कारण मेरे मन में लगता है कि स्टडी अच्छी करके डबल डॉक्टर बनूं.
ये प्राणिक भट्टी के प्रश्न उत्तर है या ज्ञान योग के?
ये प्राणिक भट्टी करने से प्रश्न निकल रहे हैं उनके मन से.
चलो ये भी अच्छा है. प्रश्न क्या
है? क्या करूं मैं, ये पढ़ाई पढ़ूं या नहीं पढ़ूं डॉक्टर बनने की पढ़ाई? ये भी असमंजस की स्थिति.
अभी वर्तमान में पढ़ाई चालू रखो. समर्पण जो है वो क्रिया का नाम नहीं है. समर्पण संकल्प से नहीं किया जाता है, समर्पण होता है. इट विल बी अ कॉल, एक डिवाइन कॉल आएगा एक समय अपने आप, और तब होगा वो. अभी अगर करोगे तो हो सकता है यहाँ आ जाओ, वहां आ जाओ, सेंटर पे चले जाओ, और अंदर वे अतृप्त इच्छा रहेगी कि पढ़ाई करनी थी, वो खींचती रहेगी फिर, और समस्या आएगी तो चले फिर वापस, इधर भी नहीं उधर भी नहीं. इसीलिए पढ़ाई चालू रखो, हो सके तो अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, इंडिपेंडेंट हो जाओ उसके बाद। और इस बीच में अगर कभी ये कॉल आएगा तो वो कॉल ऐसा होगा, ऐसा कॉल होगा वो, कि व्यक्ति फिर रुकेगा नहीं। और किसी से समर्पण होना ये किसी से पूछ के नहीं किया जा सकता।
जैसे वो अम्मा ने रुकी
96 एज में, उसने पूछा किसी को, उसने अगर पूछा होता क्या मैं पढ़ाई करूं, क्या उत्तर देते थे उसको लोग, अरे तुम 96 उम्र में स्कूल में जाओगी पढ़ने, वो भी पहली बार, साइकेट्रिस्ट को दिखाओ। उसी तरह समर्पित हूं या नहीं हूं ये प्रश्न पूछना अर्थात अभी तैयारी नहीं है आत्मा, ये प्रश्न पूछा ही नहीं जाता है। दादियों ने किससे पूछा था, यज्ञ के इतने वरिष्ठ भाई बहने किससे उसने उन्होंने पूछा था, किसी से नहीं। ये प्रश्न पूछना अर्थात अपक्व अवस्था है, अभी परिपूर्णता आई नहीं है। अपने आप डिवाइन कॉल आएगा। सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी जो है वो सैनिक था, देश की रक्षा के लिए जा रहा था, अचानक उसको कॉल आता है, फ्रांसिस। वो देखता है कौन मुझे पुकार रहा है, कौन देख रहा है, वो घोड़े को पानी पिला रहा है, सेना आगे चली गई, देश के लिए लड़ने जा रहा है, फ्रांसिस। वो कहता है कौन है, वो आवाज कहती है जाओ मेरा पुराना जर्जर हुआ घर को वापस बनाओ। कौन सा घर, किसका घर, उसे कुछ पता नहीं। वो वापस आता है, राजा सुनता है ये क्या सैनिक वापस आ गया, और उसके माँ बाप नाराज होते हैं कि तुम देश के लिए लड़ने गए थे भाग के वापस आ गए। उसको जेल में डाल दिया जाता है, 1 साल जेल में रहता है और निकलता बाहर अलग ही व्यक्ति है। वो आवाज ही गूंज रहा है उसको, फ्रांसिस, बिल्ड अप माई हाउस अगेन। फिर अचानक देखता है एक जर्जर हुआ चर्च है और उसका कंस्ट्रक्शन चालू करता है, वो पत्थर लाता है खुद ही, सब काम करता है सब छोड़ के, और क्रिश्चियनिटी के इतिहास का सबसे पहला सन्यासी संत सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी बना। त्याग तपस्या सब वहां से चालू हुई, नहीं तो वो धर्म भी सब विलासिता में डूब गया था, पोप और ये सब में। धीरे धीरे इसने फिर से ब्रह्मचर्य को लाया, धीरे धीरे फिर से पॉवर्टी को लाया, इसने चैस्टिटी को लाया। कैसे हुआ ये, डिवाइन कॉल। कॉल आएगा एक दिन, उठो क्लैप्स माय हैंड एंड कम, आ जाओ बस। फिर व्यक्ति किसी की नहीं सुनता, वो नहीं सुनता, उसको जल जाना होता है। क्षमा कहे परवाने से, परे चले जा, मेरी तरह जल जाएगा यहां नहीं आ। परंतु वो नहीं सुनता क्योंकि उसे जल जाना होता है। ये है समर्पण। ऑप्शन
साधन जो ब्रह्म ज्ञान।
नहीं नन्ही सी हो आशा नवयुग के अरमान, तुम रोक पाएगा कौन तुम्हें, सिंह की हो संतान तुम।
जन्म ही दुत्कार है।
नहीं बहाने कोई उलाहने, पुरुषार्थ का तूफान तुम, रोक पाएगा कौन तुम्हें, सिंह की हो संतान तुम।
अभी नहीं तो कभी नहीं, हर क्षण की दरकार है, छूट गया ये अवसर तो हर जन्म ही दुत्कार है। नहीं बहाने कोई उलाहने, पुरुषार्थ का तूफान तुम, रोक
पाएगा कौन तुम्हें, सिंह की हो संतान तुम।
एक उफान भर, एक उफान भर, आ, 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 आ।